नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसे विज्ञान की बात करने वाले हैं जो पर्दे के पीछे काम करता है।
पर्दे के पीछे?
हाँ, मतलब जो हमारी सेहत से जुड़े लगभग हर फैसले को उसे प्रभावित करता है। कौन सी वैक्सीन लगवानी है, सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी क्यों है,
या लॉकडाउन लगाना सही था या नहीं, ये सारे सवाल।
बिल्कुल, इन सब के जवाब वो एक ही विज्ञान से निकलते हैं।
और का ज्ञान का नाम है एपिडेमियोलॉजी, जिसे हम महामारी विज्ञान भी कहते हैं। और इसे समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी गाइड है, रोडोल्फो साराची की किताब एपिडेमियोलॉजी, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
और ये किताब सिर्फ मतलब फैक्ट्स के लिस्ट नहीं है।
नहीं, ये हमें दुनिया को एक नए नजरिए से देखना सिखाती है।
सही कहा, आज के दौर में तो ये और भी जरूरी हो गया है। स्वास्थ्य को लेकर हर तरफ से जानकारी आ रही है, कुछ सही कुछ गलत, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम भरोसा किस पर करें।
तो ये चर्चा हमें वही वैज्ञानिक औजार देगी, है ना, जिससे हम सही गलत की पहचान कर सकें।
बिल्कुल।
तो चलिए सबसे पहले उस शख्स से मिलते हैं जिन्होंने ये किताब लिखी, रोडोल्फो साराची। ये कौन थे और मतलब वो इतने खास क्यों हैं इस विषय पर लिखने के लिए?
देखिए, रोडोल्फो साराची कोई सिर्फ किताबी विद्वान नहीं थे, वो इटली के एक बहुत ही सम्मानित महामारी विज्ञानी थे और उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा असली मैदान में काम करते हुए बिताया है।
अच्छा।
हाँ, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की जो कैंसर पर रिसर्च करने वाली टॉप एजेंसी है ARC, उसके साथ सालों तक जुड़े रहे।
अरे वाह, मतलब उनका काम सीधे सीधे दुनिया की हेल्थ पॉलिसीज को प्रभावित करता था।
बिल्कुल, वो उन लोगों में से थे जो ये तय करते थे कि जैसे मोबाइल फोन से कैंसर होता है या नहीं, या कोई केमिकल हमारे लिए खतरनाक है या नहीं।
ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
बहुत बड़ी, और यही बात उन्हें खास बनाती है। वो जानते थे कि एपिडेमियोलॉजी सिर्फ नंबरों और आंकड़ों का खेल नहीं है। ये एक मानवीय विज्ञान है, इसमें अनिश्चितता हमेशा रहती है, और उनकी खूबी यही थी कि वो इस मुश्किल विज्ञान को एक दार्शनिक नजरिए से देखते थे और उसे आम लोगों के लिए आसान बना पाते थे।
ठीक है, तो अब सीधे किताब पर आते हैं। इसका सबसे बड़ा आइडिया, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है?
अगर एक लाइन में कहूं तो ये किताब बताती है कि स्वास्थ्य सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह आबादी का विज्ञान है।
आबादी का विज्ञान?
हाँ, इसका मेन आइडिया ये है कि अगर हमें बीमारियों के असली कारणों को समझना है, उन्हें रोकना है, तो हमें एक इंसान को देखने के बजाय पूरी आबादी के पैटर्न को देखना होगा।
ये थोड़ा अलग है सुनने में। हम तो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं बीमार क्यों पड़ा या मुझे क्या करना चाहिए।
और बस यहीं पर ये किताब हमारा नजरिया बदल देती है। ये कहती है कि मैं क्यों बीमार पड़ा से ज्यादा जरूरी सवाल है, लोगों का ये समूह दूसरे समूह के मुकाबले ज्यादा बीमार क्यों पड़ रहा है।
अच्छा।
जब आप ऐसे सोचना शुरू करते हैं तो हैरान करने वाली चीजें दिखती हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति को दिल का दौरा क्यों पड़ा, ये बताना बहुत मुश्किल है।
हाँ, कई वजह हो सकती है।
पर यह पता लगाना आसान था कि 1970 के दशक में जापानियों की तुलना में फिनलैंड के लोगों में दिल के दौरे की दर 10 गुना ज्यादा क्यों थी।
10 गुना? तो क्या क्या वजह थी इसकी?
जवाब किसी एक व्यक्ति की जेनेटिक्स में नहीं था, वो पूरे समाज के खान पान, उनकी जीवन शैली और कोलेस्ट्रॉल के लेवल में छिपा था। जब आप जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखते हैं तभी असली कारण नजर आते हैं।
कमाल है। तो ये वो महामारी विज्ञानी मानसिकता है जिसकी बात हो रही है।
बिल्कुल, और ये किताब हमें यही सिखाती है।
तो ये विज्ञान सिर्फ हैजा या कोविड जैसी महामारियों के लिए नहीं है?
नहीं नहीं, ये कैंसर से लेकर दिल की बीमारियों तक हर चीज पर लागू होता है। ये आप कह सकते हैं स्वास्थ्य की जासूसी का विज्ञान है।
स्वास्थ्य की जासूसी, ये अच्छा है। तो चलिए इस जासूसी की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि ये जासूस सबूत कैसे इकट्ठा करते हैं।
हाँ, और इसकी शुरुआत एक क्लासिक जासूसी कहानी से ही होती है,
डॉक्टर जॉन स्नो और लंदन का हैजा।
बिल्कुल, ये कहानी इस विज्ञान की आत्मा है। 1854 में लंदन में हैजा फैला था। किसी को नहीं पता था क्यों हो रहा है।
ज्यादातर लोग तो सोचते थे कि ये खराब हवा से फैलता है।
हाँ, मियाज्मा थ्योरी। लेकिन डॉक्टर जॉन स्नो को इस पर शक था। उन्होंने कुछ अलग किया। उन्होंने हर मौत का पता एक नक्शे पर लगाना शुरू किया।
मतलब डेटा विजुअलाइजेशन?
वो भी बिना किसी कंप्यूटर के।
ठीक कहा। और जब उन्होंने नक्शा देखा तो एक चौंकाने वाला पैटर्न दिखा। लगभग सभी मौतें एक ही पानी के पंप, ब्रॉड स्ट्रीट पंप के आसपास हुई थी।
स्नो को बैक्टीरिया या वायरस के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन सिर्फ इस पैटर्न के आधार पर उन्होंने लोकल अधिकारियों को उस पंप का हैंडल हटाने के लिए मना लिया।
और फिर
हैंडल हटा और महामारी लगभग तुरंत रुक गई।
अरे वाह,
ये एक जबरदस्त क्षण था। इसने साबित किया कि आपको बीमारी के हर पहलू को जानने की जरूरत नहीं है अगर आप सही पैटर्न की पहचान करके उसे रोक सकते हैं।
ठीक है, तो पैटर्न की पहचान करना पहला कदम है, लेकिन बीमारियों को नापने के भी तो कुछ तरीके होंगे। किताब में प्रेवलेंस और इंसिडेंस जैसे शब्द
हैं। हाँ, ये सुनने में भारी लगते हैं पर इनका फंडा बहुत सिंपल है।
अच्छा,
आप एक भरे हुए बाथटब की कल्पना कीजिए। बाथटब में इस वक्त कुल कितना पानी है वो है प्रेवलेंस,
मतलब अभी आबादी में कुल कितने मरीज हैं, एक स्नैपशॉट जैसा।
बिल्कुल, और नल से कितनी तेजी से नया पानी गिर रहा है
वो हो गया इंसिडेंस, यानी हर दिन कितने नए केस आ रहे हैं।
अपने पकड़ लिया, इंसिडेंस हमें रिस्क बताता है, बीमारी के फैलने की रफ्तार, और दोनों जरूरी हैं पर अलग अलग कहानी बताते हैं।
ठीक है, तो हम बीमारी को नाप सकते हैं, लेकिन असली सवाल तो वही है, ये हो क्यों रही है, मतलब हम अपराधी यानी कारण तक कैसे पहुंचते हैं।
हाँ, ये जासूसी का सबसे मुश्किल हिस्सा है और मोटे तौर पर इन स्वास्थ्य जासूसों के पास सबूत इकट्ठा करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है लोगों पर नजर रखना, जिसे हम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज कहते हैं,
बिना किसी दखल के बस देखना।
हाँ, इसका एक तरीका है भविष्य की ओर देखना, इसे कोहोर्ट स्टडी कहते हैं। वैज्ञानिक लोगों का एक बड़ा समूह लेते हैं, मान लीजिए 1 लाख लोग, और फिर सालों बल्कि दशकों तक उनका पीछा करते हैं।
दशकों तक?
हाँ, वे उनकी आदतों, खान पान, हर चीज का रिकॉर्ड रखते हैं और देखते हैं कि समय के साथ किसे कौन सी बीमारी होती है। ब्रिटिश डॉक्टर स्टडी इसका क्लासिक उदाहरण है। उसने 50 साल तक डॉक्टरों का पीछा किया और साबित किया कि धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर होता है।
तरीका शायद अतीत की ओर देखना होगा।
बिल्कुल, उसे केस कंट्रोल स्टडी कहते हैं। इसमें हम उन लोगों से शुरू करते हैं जो पहले से बीमार हैं और उनकी तुलना स्वस्थ लोगों से करते हैं। फिर हम अतीत में जाकर देखते हैं कि दोनों ग्रुप की आदतों में क्या फर्क था।
लेकिन इन दोनों ही तरीकों में एक बहुत बड़ी समस्या है। हो सकता है दो चीजें एक साथ हो रही हों पर एक दूसरे का कारण ना हो। जैसे गर्मियों में आइसक्रीम की बिक्री भी बढ़ती है और डूबने की घटनाएं भी। इसका मतलब ये तो नहीं कि आइसक्रीम खाने से लोग डूबते हैं?
बिल्कुल, ये एपिडेमियोलॉजी का सबसे बड़ा सिरदर्द है। विज्ञान की भाषा में इसे कन्फाउंडिंग कहते हैं।
कन्फाउंडिंग?
हाँ, यहाँ छिपा हुआ तीसरा खिलाड़ी गर्मी का मौसम है। एक अच्छे महामारी विज्ञानी का आधा समय तो इन छिपे हुए कन्फाउंडर्स को खोजने और हटाने में ही निकल जाता है।
तो इस कन्फाउंडिंग की समस्या का हल क्या है? कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पक्के तौर पर कह सकें कि ए ही बी का कारण है?
हाँ, एक तरीका है जिसे विज्ञान का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, वो है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल या RCT।
अच्छा, ये एक एक्सपेरिमेंट है?
हाँ, ये सिर्फ देखना नहीं है, इसमें वैज्ञानिकों का पूरा कंट्रोल होता है। वो हजारों लोगों को लेते हैं और सिक्का उछालकर उन्हें दो ग्रुप में बांट देते हैं।
सिक्का उछालकर मतलब पूरी तरह से रैंडम?
हाँ, रैंडमाइजेशन। इससे ये पक्का हो जाता है कि दोनों ग्रुप हर मामले में लगभग एक जैसे हैं, उनकी उम्र, आदतें, सब कुछ। फिर एक ग्रुप को असली दवा दी जाती है और दूसरे को एक नकली गोली, प्लेसिबो। क्योंकि दोनों ग्रुप में सिर्फ दवा का फर्क है तो अंत में जो भी नतीजा आएगा हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि वो दवा की वजह से ही है,
किसी और कन्फाउंडर की वजह से नहीं।
बिल्कुल, सारी वैक्सीन और दवाइयां इसी प्रक्रिया से गुजरती हैं।
तो इस पूरी चर्चा से जो बड़े संदेश निकल कर आ रहे हैं वो क्या है? मेरे लिए तो पहला यही है कि एपिडेमियोलॉजी हर पब्लिक हेल्थ पॉलिसी की रीढ़ है।
सही कहा, बच्चों के टीकाकरण का कार्यक्रम हो या मिड डे मील योजना, इन सब के पीछे यही विज्ञान है जो हमें बताता है कि पूरी आबादी के लिए सबसे अच्छा क्या है।
दूसरा बड़ा आइडिया वो है नजरिया बदलने की ताकत, जूम आउट करके जनसंख्या के स्तर पर सोचना।
हाँ, ये हमें वो पैटर्न और रिस्क फैक्टर दिखाता है जो व्यक्तिगत स्तर पर दिखते ही नहीं।
और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है वैज्ञानिक कठोरता का सम्मान करना। ये समझना कि किसी कोरिलेशन को कॉजेशन साबित करने की यात्रा कितनी मुश्किल होती है।
हाँ, ये सिर्फ एक हेडलाइन या एक स्टडी का नतीजा नहीं होता, बल्कि कई अलग अलग तरह के सबूतों को एक साथ तौलने की प्रक्रिया है।
अगर हम इसे भारतीय संदर्भ में देखें तो क्या कोई हाल का उदाहरण है जहाँ ये विज्ञान एक्शन में दिखा हो?
पोलियो और कोविड तो है ही, पर केरल में निपाह वायरस का जो प्रकोप हुआ था वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है।
अच्छा, हाँ।
जब कुछ रहस्यमयी मौतें होने लगीं, तो महामारी विज्ञानी ही थे जिन्होंने जमीन पर उतरकर जासूसों की तरह काम किया। उन्होंने हर मरीज के संपर्क में आए लोगों का पता लगाया, बीमारी के फैलने का नक्शा बनाया और आखिरकार स्रोत तक पहुंचे,
जो कि फल खाने वाले चमगादड़ थे।
बिल्कुल, उनके इसी काम की वजह से उस खतरनाक प्रकोप को एक छोटे से इलाके में ही रोक लिया गया।
वाह, ये तो सच में किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है।
और सिर्फ बीमारियां ही नहीं, हमारी रोजमर्रा की नीतियां भी इसी पर आधारित हैं, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
NFHS।
हाँ, वो हर कुछ साल में देश भर से स्वास्थ्य का डेटा इकट्ठा करता है। इसी डेटा का विश्लेषण करके सरकार को पता चलता है कि किस राज्य में कुपोषण ज्यादा है, कहाँ अनीमिया की समस्या है, और फिर उसी हिसाब से टारगेटेड योजनाएं बनती हैं।
किताब में जरूर कुछ ऐसी पंक्तियां होंगी जो इस पूरे विज्ञान का सार बताती हैं।
शक्तिशाली विचार है। एपिडेमियोलॉजी का मूल दृष्टिकोण एक समूह में बीमारी की घटना की तुलना दूसरे समूह से करना है। तुलना के बिना हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते।
मतलब विज्ञान हमेशा तुलना पर आधारित होता है, अकेले कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता।
सही बात है। और एक और है, एक सांख्यिकी जुड़ाव से कारण कार्य संबंध तक पहुंचना कोई गणितीय गणना नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिक अनुमान का कार्य है।
इसका मतलब ये सिर्फ डेटा क्रंचिंग नहीं है, इसमें अनुभव, तर्क और निर्णय की भी भूमिका है।
बिल्कुल। और अंत में जो इस विज्ञान के लक्ष्य को बताता है, एपिडेमियोलॉजी का अंतिम उद्देश्य केवल बीमारी का वर्णन और विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि बीमारी को रोकना और जनता के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है।
ये ज्ञान सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि कुछ करने के लिए है। इसका एक सामाजिक मिशन है। तो ये सब ज्ञान एक आम इंसान की जिंदगी में कैसे काम आ सकता है? मान लीजिए कोई इंटरनेट पर पढ़ता है कि एल्कलाइन पानी पीने से कैंसर ठीक हो जाता है, तो इस किताब को पढ़ने के बाद सोचने का तरीका कैसे बदलेगा?
बहुत अच्छा सवाल है। अब कोई भी ऐसी हेडलाइन पढ़ेगा तो उसके मन में तुरंत कुछ सवाल उठेंगे। पहला, ये दावा किस आधार पर किया जा रहा है? क्या कोई स्टडी हुई है?
हाँ।
दूसरा, अगर हुई है तो वो किस तरह की स्टडी थी? क्या वो बस कुछ लोगों के अनुभव थे?
हाँ।
या एक बड़ा केस कंट्रोल स्टडी था, या फिर
एक RCT था?
हाँ। और तीसरा सवाल शायद ये होगा कि क्या इसमें कन्फाउंडिंग कारकों पर विचार किया गया?
अच्छा।
जैसे हो सकता है जो लोग महंगा एल्कलाइन पानी पी रहे हों, वो वैसे भी अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखते हों, अच्छा खाते हों, कसरत करते हों, तो असर पानी का है या इन सब चीजों का?
बिल्कुल, यही तो है क्रिटिकल थिंकिंग। ये मानसिकता हमें सनसनीखेज दावों और स्वास्थ्य से जुड़ी अफवाहों से बचाती है। ये हमें एक सूचित नागरिक बनाती है। हम समझने लगते हैं कि सीट बेल्ट लगाना क्यों जरूरी है, या सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध क्यों है।
हाँ, कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला नहीं, बल्कि लाखों लोगों की सेहत की रक्षा के लिए ठोस सबूतों पर आधारित फैसले हैं।
तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि हमारा सामूहिक स्वास्थ्य कोई संयोग या किस्मत की बात नहीं है। ये एक विज्ञान है जिसका व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जा सकता है और जिसे बेहतर बनाया जा सकता है।
और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि किसी चीज को किसी दूसरी चीज का कारण कहने के पीछे कितनी ज्यादा वैज्ञानिक कठोरता और ईमानदारी की जरूरत होती है।
सही बात है।
ये हमें न केवल स्वास्थ्य के बारे में, बल्कि दुनिया में किसी भी जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए एक जरूरी क्रिटिकल थिंकिंग टूल देता है। ये हमें याद दिलाता है कि अफवाहों और डर के इस दौर में विश्वसनीय और परखा हुआ ज्ञान ही बीमारी के खिलाफ हमारा सबसे प्रभावी हथियार है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।